रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 30 मार्च, दिन मंगलवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। स्वेज नहर में हफ्ते भर बाद खुला ट्रैफिक, विश्व व्यापार को राहत। म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे शरण तलाश रहे लोगों को वापस म्यांमार भेजेगा भारत। ब्राजील में बोलसोनारो कैबिनेट में बदलाव। कोरोना प्रकोप से निपटने में नाकामी के बाद आलोचना झेल रहे हैं राष्ट्रपति बोलसोनारो। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहे बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती दुनिया के व्यापार की रीढ़ माने जाने वाली स्वेज नहर में तकरीबन हफ्ते भर लगा जाम अब खुल गया है। नहर में फंसे उस बड़े कंटेनर जहाज को काफी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है, जिसने विश्व व्यापार को बड़ा झटका पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान।
पिछले हफ्ते मंगलवार को तेज हवाओं से जूझता 400 मीटर लंबा जहाज तिरछा होकर स्वेज नहर में फंस गया था, जिससे वहां ट्रैफिक जाम हो गया। इस जाम में विश्व व्यापार के तकरीबन 12% हिस्सेदारी करने वाले 367 मालवाहक जहाज फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद सोमवार को समुद्र में आए ज्वार से बढ़े पानी की मदद से इस स्वेज नहर अथॉरिटी को इस फंसे जहाज को निकाल पाना संभव हो पाया। इससे उन जहाजों को फिर से चल पड़ने का रास्ता खुल गया है और विश्व व्यापार को राहत मिली है। मिस्र के एक स्थानीय टीवी चैनल एक्स्ट्रा न्यूज के फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे टग बोट्स की मदद से इस जहाज को धीमे धीमे सीधा किया जा रहा है। स्वेज कैनाल अथॉरिटी यानी SCA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, SCA के अध्यक्ष एडमिरल ओसामा राबी घोषणा करते हैं कि SCA की ओर से विशाल पैनामियन कंटेनर शिप एवर गिवन को सफलतापूर्वक रेस्क्यू और रीफ्लोट कर दिए जाने से अब स्वेज कैनाल में मैरीटाइम ट्रैफिक दोबारा से खुल गया है। स्वेज नहर मिस्र में मौजूद 193 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है। इस मानव निर्मित नहर के बनने से पहले जहाजों को 9000 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता था। बीते हफ्ते लगे जाम से कई कार्गो शिप्स के फंस जाने से कच्चे तेल और दूसरे सामानों की कीमतों में उछाल आ गया था। जहां इन जहाजों में अनाज, सीमेंट जैसे ड्राई प्रोडक्ट लदे हुए हैं, वहीं टैंकरों में पेट्रोलियम उत्पाद भरे हैं। स्वेज नहर में हर दिन तकरीबन 50 जहाज आवाजाही करते हैं, जिनसे तकरीबन 9.5 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इनमें से 5 अरब डॉलर के जहाज पश्चिम की ओर, जबकि 4.5 अरब डॉलर पूरब की ओर जाते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूं रोहित जोशी। अब रुख अगली खबर का। म्यांमार में सेना का दमन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरे म्यांमार में रविवार को बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को लोकतंत्र समर्थक 114 आंदोलनकारियों की सैन्य प्रशासन की ओर से की गई दमनपूर्ण कार्रवाइयों में मौत हो गई थी। रविवार को रंगून, मिकिटीला, मोनीवा, मंडाले और देश के दूसरे शहरों में जब लोग मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जुटे और उन्होंने जुलूस के तौर पर शव यात्राएं निकाली, तो सैन्य प्रशासन ने उन पर भी गोलियां बरसाई। पहली फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से विरोध प्रदर्शनों के दमन के लिए हुई हिंसा में अब तक 423 लोग मारे गए हैं। अकेले शनिवार को ही 114 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 से लेकर 16 साल के 6 बच्चे भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से सेना के दमन की निंदा की है। हजारों लोग शरण के लिए भारत और थाईलैंड की ओर भाग रहे हैं। मानवीय सहायता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था फ्री बर्मा रेंजर्स के मुताबिक म्यांमार की सेना के विमानों ने रविवार को रात भर हवाई हमले किए थे। एजेंसी ने कहा है कि म्यांमार के उत्तरी करीन राज्य में लगभग 10,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। इधर भारत के मणिपुर राज्य की सरकार ने अपने सीमावर्ती जिलों को निर्देश दिया है कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के लिए रिफ्यूजी कैंप्स न खोले जाएं। इससे पहले भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से आने वाले अवैध शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए इंतजाम करने को कहा था। गृह मंत्रालय ने बाहरी लोगों की पहचान करने और उन्हें बिना देरी किए वापस म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने ये साफ किया था कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी विदेशी व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बीच अमेरिका में काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में अभियुक्त पूर्व पुलिसकर्मी डेरेक शाविन के खिलाफ सोमवार को ट्रायल शुरू हो गया। अभियोजन पक्ष ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का पूरा वीडियो कोर्टरूम में जूरी के सामने चलाया, जिसमें देखा गया कि पुलिसकर्मी डेरेक शाविन फ्लॉयड पर झुके हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने जूरी से डेरेक शाविन को दोषी करार कर सजा देने की गुजारिश की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि डेरेक ने 9 मिनट से अधिक देरी तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटने से दबाए रखा था और यही उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील एरिक नेल्सन की पूरी कोशिश यह साबित करने की रही कि फ्लॉयड की मौत की वजह कुछ और थी। उन्होंने फ्लॉयड के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था, जो कि उनकी मौत की एक बड़ी वजह बनी। जिस वक्त फ्लॉयड को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके पास ड्रग्स थी और पुलिस से छिपाने के लिए उन्होंने वे ड्रग्स निगल ली थी। दूसरे दिन की सुनवाई मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। पूरी सुनवाई के करीब 4 हफ्तों में पूरे होने का अनुमान है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान 3 गवाहों को कोर्ट रूम में बुलाया गया, जिनसे अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने सवाल किए। ट्रायल शुरू होने के ठीक पहले फ्लॉयड के परिजन और दोस्तों ने मिनोपोलिस शहर में एक जुलूस निकाला, शांति सभा आयोजित की और उनके लिए न्याय की मांग की। फ्लॉयड के भाई टेरेंस ने कहा, हम लोग ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, हमारी चर्च में आस्था है, इसलिए हम सिस्टम से मांग करते हैं कि उन्हें न्याय मिले। इधर कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपनी कैबिनेट में बड़े बदलाव किए हैं। इस मुसीबत से निपटने में नाकाम रहने पर आलोचना का सामना कर रहे बोल्सोनारो ने अपने 6 मंत्रियों को हटा दिया है। कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों में कार्लोस अल्बर्टो को अर्नेस्टो आराउजो की जगह विदेश मंत्रालय और वाल्टर सूजा ब्रागो को फर्नांडो एजेवेडो सिल्वा की जगह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार शाम को बोल्सोनारो के प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। शुरुआत में यह जानकारी सामने आई थी कि बोल्सोनारो के विश्वस्त माने जाने वाले अराउजो और सिल्वा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बोल्सोनारो कोविड महामारी के बाद से 3 स्वास्थ्य मंत्रियों को बदल चुके हैं और 4th का कार्यकाल जारी है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि सीरिया में रूस की ओर से बंद किए गए बॉर्डर क्रॉसिंग्स को फिर से खोला जाए। उन्होंने कहा कि युद्ध से तबाही झेल रहे सीरिया के लोगों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इनका खोला जाना जरूरी है। इस मामले पर अपनी आंखें मूंदे रखने के लिए उन्होंने दुनिया के ताकतवर देशों की आलोचना की। ब्लिंकन ने ये बातें सोमवार को सीरिया के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई सुरक्षा परिषद की एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। 10 सालों के संघर्ष से तबाह सीरिया में लोग यूएन की ओर से भेजी जाने वाली राहत सामग्री पर निर्भर करते हैं। जुलाई 2020 से यह राहत सिर्फ तुर्की से लगी बाब अल हवा सीमा से ही पहुंच पा रही है। सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को समर्थन देने वाला और यूएन में वीटो की ताकत रखने वाला रूस दूसरी जगह सीमाओं को खोलने के प्रस्तावों को पास नहीं होने देता। उसका तर्क है कि ऐसा करने से सीरिया सरकार की संप्रभुता प्रभावित होती है। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां यीव ले द्रियान ने लेबनान के नेताओं पर जल्द से जल्द सरकार बनाने का दबाव बनाया है। उन्होंने लेबनानी नेताओं से इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर फोन से बात की। द्रिया ने उनसे कहा है कि सरकार गठन में जानबूझकर अड़चनें पैदा की जा रही हैं, जिससे लेबनान की पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर है। उन्होंने जिन नेताओं से बात की उनमें लेबनान के राष्ट्रपति माइक आउन, कार्यकारी प्रधानमंत्री साद हरीरी और संसद के स्पीकर नबीह बेरी मुख्य रूप से शामिल हैं। बेरूत में ताकतवर धमाके के बाद 7 महीनों से आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे लेबनान के लिए द्रिया ने सहानुभूति जताते हुए वहां के नेताओं से कहा है कि देश को मौजूदा संकट से उबारने के लिए बड़ी पहल उनको ही करनी होगी। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।